ध्यानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै चेप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहा पुत्रेति तन्मे तया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञाय राधे तन्मे मां शरणमपिते। भगवतामृतम् गोपियों के प्रेम की महत्ता बतलाई और अतम चरम सीमा तक बतलाई। बतलाने का तात्पर्य है जीवों के लिए इससे बढ़कर के और कोई चरम भगवत सेवा नहीं है या चरम उद्देश्य नहीं है, यही प्रेम प्रयोजन है। राय रामानंद संवाद में बतलाते बतलाते वर्णाश्रम धर्म से आरंभ किया और फिर आगे चले गए शांत प्रेम, दास प्रेम, सख प्रेम, फिर वात्सल्य भाव, वात्सल्य के बाद में तब फिर गोपियों के भाव और गोपियों में भी प्रधाना गोपियों का भाव, उसके बाद ले आए श्रीमती राधिका का। यही सब बतलाया जो मैंने जो प्रतिज्ञा की थी, जो भक्त हमको जिस रूप में भजन करेगा मैं उसका उसी रूप में प्रतिदान दूंगा। सबके लिए तो मैंने वैसा किया किंतु गोपियों के लिए वैसा नहीं कर सका, इतनी उनकी महत्ता है। इसके बहुत से कारण दिख रहे, जैसे वो सब कुछ छोड़ करके हम में तन्मय हो जाती हैं, हम किसी को भी छोड़ नहीं सकते, न माता को, न पिता को, न सखा को, न भृत्य को, न किसी भक्त को, किसी को मैं छोड़ नहीं सकता। और ये सब कुछ छोड़ करके यहाँ तक कि अपने शरीर को भी छोड़ सकती हैं, छोड़ दिया, मैं इस शरीर को भी नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं इनका ऋणी हूँ। इनकी तो बात ही क्या, कृष्ण और भी बतला रहे, इनकी तो बात क्या, इनके संग से कितने नीच जाति के लोग, कुरूप लोग, जैसे तैसे लोग, इनके संग से मुझ परब्रह्म नंदनंदन के स्वरूप में हमको प्राप्त कर लिया है, तो और की तो बात क्या, हम लोगों के इन गोपियों के संबंध से, इसलिए उनकी चरम महिमा को बतला रहे। किंतु कोई ना समझ ले कि जब मैं गोपियों के समान हूं, ये एक उद्देश्य बतलाया कि उच्च से उच्च कोटि का जो भक्त है उद्धव ही नहीं पा सके, नारद नहीं पा सके, इतना उच्च ये भाव है। फिर हम लोग यदि अभिमान करें कि हम ही लोग वैसे हो गए हैं तो गड़बड़ी हो जाएगा, इसलिए हमको वैधि भक्ति के प्रारंभ से आरंभ करना होगा। हम लोगों में अभी वैसा लोग भी हो सकता है कि कोटि कोटि लोगों में से दो एक आदमी को ऐसा लोभ हो जाए, ऐसा लोभ होना बड़ा कठिन है, इसलिए वैदिक भक्ति के प्रथम चरण से ही आदो साधु संग न तब भजन शिक्षा द्वितीय साधु संग फिर अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि ये सब काम सबसे पहले आरंभ करना पड़ेगा हरिनाम दीक्षा के बाद में छह वेगों का दमन छह असत्संगों का प्रत्याय छह सत्संग को ग्रहण इस तरह से करना पड़ेगा। जो लोग अपने तामसिक भावों को रोक नहीं सकते थोड़े में बिगड़ जाते हैं इस आदेश संपन्न हो जाते हैं उनके लिए ये चीजें नहीं। यदि है भी तो भगवान का जो हरिनाम करना है गुरु वैष्णव की सेवा करना है ये करते हुए आगे हम लोग पढ़ेंगे तब इन चीजों को समझ सकते हैं अन्यथा नहीं। कृष्ण स्वयं ये बतला रहे हैं कब बतला रहे हैं एकादश स्कंद में बतला रहे हैं। एकादश स्कंद दशम स्कंद के बाद में जो आया तो वो सब चीजें हम लोग पढ़ते नहीं। दशम स्कंद प्रयोजन तत्व है और एकादश स्कंद क्या है साधन तत्व है। अब अविधेय या साधन को साधन तत्व है जैसे चैतन्य चरितामृत में साध तत्व को बतलाकर आदि तृतीय चतुर्थ में और तब फिर धीरे धीरे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को साधन तत्व के संबंध में शिक्षा दी। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद पहले तो वैराग्य इत्यादि के सब राजाओं के सब चरित्र बतलाए सकामा भक्ति इत्यादि का वर्णन किया इसमें वो ध्रुव में प्रहलाद में ज्ञान भक्ति का उदाहरण देकर के उसको समझाए ज्ञान भक्ति और ज्ञान एक नहीं है इसको भी समझेंगे इन सबको बतला करके और महाराजाओं के लड़ाई युद्ध और इत्यादि के ये सब चीजें बतला करके और फिर दशम स्कंद का वर्णन किया। दशम धीरे 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 जब तक ब्रज में रहे भक्ति का उसमें भी ये बाल्य लीला पौगंड लीला और अंत में किशोर लीला का वर्णन करके फिर मथुरा चले गए। इसके बाद में एकादश स्कंद में हम लोग कैसे उसको पा सकते हैं पहले बतलाया नारद और महाराज वसुदेव उसमें नारद जी ने उनको नेमी नव जगेंद्र का संवाद बतलाया कैसे साधन आरंभ किया जाएगा। नारद जी आकर के प्रारंभ भागवत धर्म किसको कहते हैं श्रीमद् भागवत में अत्यंत सरल सहज तरीके से सहज रूप में भगवान ने अपने पाने के लिए जो विधियां नियम बतलाया है उसको कहते हैं भागवत। इसलिए यदि दशम स्कंद के चीज को पाना है तो एकादश स्कंद को अच्छी तरह से समझ करके वैसे लाना पड़ेगा। पृथ्वी को आदमी काटते हैं खोदते हैं टट्टी पैखाना करते हैं पृथ्वी कुछ करती है उसको गुरु बनाया पेड़ों को गुरु बनाया वेश्या को गुरु बनाया किसलिए वेश्या को गुरु बनाया 12 बजे रात तक वो देखती थी जब कोई आ जाएगा तो रुपये मिल जाएंगे हमें श्रृंगार बना करके कोठारी में कोठे पर बैठी थी 12 बज गया 1 बज गया 2 बज गया आकर के वो चला जाता था बस उसको तीव्र वैराग्य। अरे जब तक की आशा है तब तक दुखी आशा को छोड़ो इस जगत में हम इस चीज से सुख पा सकते हैं इन सब प्रकार की आशाओं को छोड़ो उसे कोई भी सुखी नहीं हो सकता है संसार में। हम सोचते हैं बचपन में हम जरा लिख पढ़ जाए तो सुखी हो जाए कुछ लिख पढ़ लिया तो आगे अंततः ग्रेजुएशन करना है ग्रेजुएशन भी हो गया तो अब कुछ किसी चीज में डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, इत्यादि में, बहुत सी चीजों में हमको देखना। वो भी हो गया तो नौकरी नहीं मिल रही, बाई चांस मिली भी गई, अब घर बाड़ी चाहिए, शादी होनी चाहिए, वो भी मिल गई, अच्छी पत्नी का मिलना या अच्छे पति का मिलना बड़ा भारी कठिन, वो भी मिल गया, बेटा नहीं हो रहा है, संता यदि बेटा भी मिल गया तो कुपात्र हो गया, तब तक फिर बूढ़े हो गए, फिर जैसा का तैसा रह गया, कोई सुख नहीं मिला। इस तरह से समझना चाहिए संसार में, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, क्या वो कांता की आशा छोड़ करके, ये आएगा हमको पैसा देगा मैं सुखी हो जाऊंगी, उसने आशा की, उसकी काट दी आशा, और घर में आराम के साथ में सिंगार उतार करके सो गई। ऐसे ही साधु पुरुष, बुद्धिमान पुरुष संसार से विरक्त इत्यादि होकर के भगवान का भजन करेगा। जिसको आशा है वो संन्यास न ले, त्यागी मत हो। प्रभुपाद ने थोड़ा सा ये सहूलियत दी, जैसे ऐसे व्यक्ति भी आश्रम में जाकर के सुधर जाएंगे, सत्संग सठ सुधर ही सतसंगत, तो सुधर जाएंगे, किंतु कुछ ऐसे हैं जो वो सुधरते नहीं और बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए सारी शिक्षाएं गृहस्थ आश्रम में रह करके पूरी तरह से सीख करके ही आना ठीक है। कभी प्रभुपाद ने देखा जो कलिकाल में ऐसा घर में भी ऐसा है जो भजन नहीं कर सकते, घर वाले ही भगवत विरोधी हैं, तो फिर कहाँ सीखेगा, इसलिए गृहस्थी के रूप में ही एक मठ को बना लो और उसी में सब सीखो, सीख करके फिर भगवान का भजन करो। वहीं से नारद जी ने आरंभ किया नव जोगिंद्र संवाद से, और इसके बाद में कृष्ण बढ़ते बढ़ते बढ़ते, ये सब श्लोकों का अर्थ हम लोग नहीं समझ, हम लोग समझते थे दशम स्कंद ऐसे ही है नीरस चीज, किंतु दशम स्कंद में ये सब चीजें, अभी जो पीछे वाला भी, इसमें भी जो उद्धव को जो बतला रहे हैं एकादश स्कंद में, कितने गंभीर प्रेम के तत्व हैं। यदि एकादश स्कंद नहीं आता, दशम स्कंद इतना ऊंचा है ये समझ में नहीं आता। इसलिए प्रारंभ से एकादश को अच्छी तरह से श्रवण मनन और अनुशीलन करने की आवश्यकता है, तब हम इसमें प्रवेश कर सकते हैं। यदि दशम स्कंद ये एकादश स्कंद का यह श्लोक नहीं रहता, हम समझ ही नहीं सकते थे। करें मत खामा रमणम जार स्वरूपम अभिदो बला ब्रह्ममाम परमाम परमम पाप संगात सत सहस्त्र सह। हमारे स्वरूप को नहीं जानने वाले, मैं सच्चिदानंद कृष्ण तत्व हूं, मैं रसमय विग्रह हूं, मैं समस्त विश्व का आदि, स्वयं अनादि, समस्त कारणों का कारण परम ब्रह्म हूं, मैं नारायण इत्यादि, राम इत्यादि, नृसिंह के भी मूल हूं, यहां तक कि द्वारकाधीश इत्यादि का भी बहुत मैं ऊपर हूं, मूल हूं। इस स्वरूप को न जानने के कारण, अथवा जन्म कर्म च मे दिव्यम जो वेति तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम, भगवान का नाम का स्मरण करने से ही आभास के रूप में भी यदि करे भगवान का नाम आशा, तभी मुक्ति इत्यादि तो अपने आप करतल हो जाती, प्राप्त हो जाती, उसके लिए कोई चेष्टा करने की जरूरत नहीं होती। ये सब तत्व जो नहीं जानते हैं भगवत तत्व, अनभिज्ञ होने पर भी, पुलिंदी कन्याएं जंगल में रहने वाली, लकड़ी और गोबर बटोरने वाली, रूपवती भी नहीं, कुरूप, कैसी पुलिंदी कन्याएं होती, काली कुरूप हो सकती हैं, वन्य जाति की नारियां भी, हमारे परब्रह्म स्वरूप को नहीं जाना, किंतु गोपियों के संग से वे ज्ञान रहित होने पर भी तत्व से कुछ नहीं जानने वाली, कोई भी अशुद्ध आचरण नहीं करने वाली, कभी स्नान करती हैं कि नहीं ये भी, हाथ मुख धोती हैं कि नहीं, ऐसी ज्ञान रहित भी होने पर पुलिंदी कन्याएं भी संग के महात्म से, गोपियों का संग मिला, कौन सा संग मिला, जगत में इसे अधिक श्रेष्ठ संग नहीं हो सकता, उनका संग मिला, और वे हमारे प्रति गोपियों जैसा भाव उसको प्राप्त कर लिया। कैसा? चार स्वरूप माने परकीय भाव, परकीय भाव से जैसे गोपियां कृष्ण का भजन करती हैं, उसको उन्होंने पाया। कब पाया? जन्मांतरे मा के प्राप्त हुई है, यहां पर ले रहे हैं। टीका में बतलाएंगे जे कब पाया, इसी जन्म में पा लिया या दूसरे जन्म में, किंतु पा लिया। सब लोगों के लिए इसी जन्म में पाना बड़ा भारी कठिन है। इस भाव को हमने देखा है, गोपी भाव को पाने वाले वहां के दंडकारण्य के 60,000 ऋषि लोग कितने करोड़ जन्म में पाए, श्रुतियां कितने जन्म में पाई, वाल्मीकि को एक राम नाम में सिद्धि होने के लिए कितना समय देना पड़ा, अजामिल की मुक्ति हुई नाम से और गोलोक वैकुंठ गति उसको मिली, इतना सहज मत समझो। पूर्व जन्म में का उसका जरूर कुछ होगा, नहीं तो ब्राह्मण कुल में नहीं आता, पढ़ा लिखा विद्वान नहीं होता। ये दिखलाने के पढ़ा लिखा विद्वान होने पर भी कोई अपने इंद्रियों को संयम नहीं कर सकता, इस चीज को समझो, कोई भी संयम नहीं कर सकता, इसलिए उनकी दुर्दशा हुई। किंतु जैसे तैसे भगवान नाम करते हुए अपने पुत्र के लिए हो या जैसे भी करते 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 महापुरुषों का संग मिला। कौन महापुरुष? भगवान के परिकरों का संग मिला। ये संग मिलना बड़ा भारी कठिन था। ये काज ने पूर्व जन्म का कैसा संस्कार था जो उसको संग मिल गया, नाम के महिमा कब दिखलाने के लिए ऐसा हुआ। और फिर देखा जे मैं इस नाम से जब मैंने शुद्ध नहीं किया, सांकेतं परिहास्यम स्तौभम हेलनम हुआ, और ये जम के दूतों को भगा दिया, हमारा हमारी मृत्यु भी टल गई। अब इस चीज को जान करके वहां जा करके हरिद्वार में और वहां पर साधन करना आरंभ किया। गुरु उनके कौन हुए? वही चारों ऐसे गुरु उसको मिल गए और उनके संग के प्रभाव से, उनके उपदेश से फिर भजन करते करते चला गया। इसलिए ये कह रहे हैं, ओह आश्चर्य है, बड़ी बड़ा आश्चर्य है साधु संग की महिमा, अत्यंत प्रभावशाली है। कोई शंका मत करो साधु संग के ऊपर, कितना बड़ा महान शक्तिशाली है साधु संग। साधु संग जिसका नहीं है वह भगवान की प्राप्ति उसे नहीं हो सकती कदापि भी, लाख जन्म लग जाए नहीं मिलेगी। मूल है साधु संग। साधु संग तो बहुत से हैं, लाल कपड़ा गेरू लगा लिया, अपने आप दंड ले लिया या किसी से ले लिया, भीतर में जैसे हो ऊपर से साधु बन रहे हैं। इनके संग से होगा? इनके संग से नहीं होगा। जब तक शराब नहीं निराग नहीं होगा तब तक ऐसे वक्ताओं के से कुछ नहीं, गुरु से लाख गुरु हो नहीं होगा। हरिनाम लाख जन्म करता रहे तभी नहीं होगा, कोटि जन्म, कोटि जन्म, लाख तो हमने कह दिया, वहां पर कोटि जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। और कोई भी सुधर नहीं सकता, उसका प्रभाव स्थायी नहीं होगा। निराग मैंने समस्त विषयों को छोड़ चुका है, किसी भी संसारिक वस्तु के पास उसका अनुराग नहीं है, आसक्ति नहीं है, भजन में चतुर है, प्रवीण है, कुछ उपलब्धि हुई है भजन करके, कुछ उन्नत अधिकार हुआ है। ऐसे महापुरुषों के संग से, निराग वक्ता के संग से, साधुओं के संग से यह होगा, तब साधन भजन होकर के इसमें हम पहुंचेंगे। यहां पर यह बतला रहे हैं किंतु साधु संघ की महिमा अपार है। यदि साधु संघ ऐसा हो गया, बस ऐसे कर दिया, बस हो जाएगा, साधन भजन भी अपने आप हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ये साधु संघ की महिमा है। नारद जी की देखो, कैसे कैसे दुराचारी व्यक्तियों को, कैसे कैसे जड़ व्यक्तियों को, पाप में अनुरक्त लोगों को, और कैसे उनको बना दिया, उनसे भी अधिक अब ये गोपियों की महिमा बतलाते हुए कह रहे हैं। और सखे उद्धव, गोपियों की महिमा में क्या बतलाऊं, मैं नहीं बतला सकता, संभव है नहीं मेरे लिए। उनके संग के प्रभाव से उन पुलिंदियों की जो गति हुई, और पुलिंदियों में इतनी सामर्थ्य, उनका कोई संग करे तो क्या होगा, वो भी हो जाएगा, तो फिर गोपियों की महिमा छोड़ो। जैसे बतलाया है ना, यत किंकरी सुबहुषा खलुकागमानी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले जस्या कदा रसनिधे विश्वानुजाया तत्केली केंज भवनांगन मार्जनी। अरे उनकी दासियां वो कृष्ण को न चाहती हैं, राधा जी के पास फटकने उनको नहीं देती, और वो हाथ जोड़ करके उनके पैया पड़ते हैं। इन दासियों की इतनी महिमा है तो श्रीमती राधिका और गोपियों की क्या दशा होगी, कैसी स्थिति होगी। तो यहां पर इसी न्याय से ये बतला रहे हैं, जब गोपियों की तो छोड़ो, गोपियों की सहेलियों को छोड़ो, गोपियों में सबसे कनिष्ठ है उनको भी छोड़ो, वन में रहने वाली भील की कन्याएं और ये सबर कन्याएं या पुलिंदी कन्याएं, इन्हीं की देखो ये कहां थी और कहां पर मुझको प्राप्त हो गई, हमारे महिमा का ज्ञान नहीं है, और तभी कैसे प्राप्त हो गई, उसी के लिए करे। तहां देशांग प्रभाव से पुलिंदी कन्या भी नीच जाति की सहस्त्र सहस्त्र, ऐसे ही सहस्त्र सहस्त्र नारियां परम दुर्लभ गति को पाई इन गोपियों के संग प्रभाव से, जिनके संग की महिमा सुन करके श्रुतियां कैसे उनको लोभ उत्पन्न हुआ, इन गोपियों के कृष्ण के साथ में लीला विहार को सुन करके लोभ उत्पन्न हुआ, और ये श्रुतियां कैसी श्रुतियां, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई, किंतु ब्रह्मा के मुख से निकली हुई किंतु कान में कहां से आया, कौन ये श्रुतियां हैं, क्या भगवान के वाक्य हैं, निश्वास से आए हुए श्रुतियां हैं, भगवान ही के समान ये शाब्दिक रूप है, अक्षर ब्रह्म है ये बल्कि, और होने पर गोपियों की महिमा सुन करके इन लोगों को भी लोभ हुआ, और कोटि कोटि जन्म तक आराधना करके वैसा ही भाव पाया। तो गोपियों की ये महिमा उसी के लिए बतला रहे। मत कामा, इस श्लोक में मत कामा रमणम यार अस्वरूपम विदो अबला, अपने स्वरूप को नहीं जानती, कृष्ण के स्वरूप को नहीं जानती हैं, अबला हैं, अबला मैंने किसी धर्म में कर्म में कोई भी इनका बल नहीं है, भक्ति का बल नहीं है, साधु संघ का बल नहीं, कुछ भी नहीं, बस गोपियों का संग, वो भी प्रत्यक्ष रूप में नहीं, परोक्ष रूप में उनका संग, कैसे कभी कभी बुलवा लेते हैं, और कृष्ण के साथ में दिल्लगी करने के लिए उनको कभी बैठा लिया, या गोपियों की चरण धूलि समझो, अंग धूलि कहो समझो, उसके स्पर्श करने से ही देखो उनकी कैसी गति हो गई। अब ये बतला रहे हैं कि वे अबलागन जाति में बहुत नीच जाति की, कोई छूता नहीं, उनका छुआ हुआ पानी भी नहीं पीता, आजकल तो रेलवे में उनको लगा दिया गया है या इधर उधर बाध्य होकर के आपको पानी पीना पड़ेगा, किंतु लोग पीते नहीं थे। हमारे यहाँ जाति प्रथा बड़ी बुरी चीज है जो बनाई गई, बड़ी अच्छी चीज थी, बड़ी अच्छी चीज थी, इसको लोग समझ नहीं पाते। एक कलरा रोगी, जिसको रोगी है, कलरा हो गया, उसके यहाँ पर जाकर के वहां पर पानी पी सकते हैं कि नहीं, प्लेग हो गया है वहां पर कोई पानी पिएगा कि नहीं, क्यों उसे घृणा कर रहे हैं, घृणा नहीं, श्वास प्रश्वास में कीड़े जाकर के, पानी में कीड़े जाकर के आपको उसी समय में हो जाएगा, उसी समय में मरेंगे, ये तो स्थूल चीज है, और विचारों के कीड़े इतने जबरदस्त हैं कि जन्म जन्म वो खराब कर सकते हैं। तो जो लोग भगवान को नहीं मानते, भगवत विरोधी हैं, दुराचार है, दुराचार माने कृष्ण की भक्ति से बहुत दूर है, उनका छुआ हुआ पानी लोग नहीं पाते, एक लाइन में बैठ करके नहीं कहते, उनके दुर्गुण उसमें आ जाते थे, छुआछूत बुरी चीज नहीं, किसी से घृणा नहीं, किंतु उसके अंदर में जो उसके विचार में जो कीड़े हैं वो उसमें प्रवेश कर जाएंगे, इसलिए पहले ये सब विचार होता था, खान पान इत्यादि का विचार होता। एक वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री, उसके हाथ से बनाया हुआ या उसके कमाए हुए अर्थ से आप लड्डू पूरी कचौड़ी या महन भोग खाइए, क्या होगा? जो खाएगा उसकी चित्तवृत्ति नष्ट हो जाएगी। ये आजकल विचार नहीं होता, इसलिए संसार कुछ भटक रहा है और दुराचारी हो रहे हैं। यदि ये सब विचारों का ये ठीक होता, आज जैसे भारत की दुर्दशा हो रही है, विश्व की ये नहीं होती। गुरु महाराज जी कह रहे थे कंप्यूटर में ये सब आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर कि ऑपरेशन, बड़े बड़े ऑपरेशन हॉल थिएटर, जूता पहन करके नहीं जा सकते। अच्छा, कंप्यूटर रूम में नहीं जाने देंगे, क्यों? क्यों नहीं जाने देंगे? कोई भी बड़े से बड़े आदमी को नहीं घुसने देंगे, क्यों? ये कोई घृणा नहीं है, ये स्थूल कुछ परमाणु होते हैं जो हमारे लिए हर्ज कर सकते हैं और ऑपरेशन को गड़बड़ कर देंगे, या कंप्यूटर ही बीमार पड़ जाता है। अब कुछ दिन आएगा, कुछ दिनों के बाद में, जब फिर वैसे ही जो हमारे जो भारतवर्ष में जो विचारधाराएं थी वैसे ही नहीं होने से शांति जगत में नहीं होगी, लोग समझेंगे नहीं। आजकल का नियम ये है कि ऊपर वाले को भ्रष्ट करके नीचे लाओ, उनको मांस मछली खिलाओ, शराब पिलाओ, और नीचे वाले जो ऐसा करने से मिलाओ। ये नहीं कि नीचे वालों को जो शराब पीते हैं, दुराचार करते हैं, उन लोगों को सुधार करके ऊपर ले जाओ। ये पहले था, सबको ब्राह्मण बनाओ, भक्त बनाओ। आइए नहीं ब्राह्मण को और भक्त को ब्राह्मण मने क्या, विचार के द्वारा उनके ब्राह्मणत्व को छुड़ा करके सबसे बराबर बनो। आजकल ऐसा ही हो रहा है इस जगत में, और व्यभिचार, मार काट, ये सब फैल रहा है। इसलिए यहां पर बतला रहे हैं, हम अपने प्रसंग से हट करके यहां पर नीचे आकर के बतलाते हैं, क्यों लोग नहीं समझते हैं इस चीज को, इसलिए। नहीं तो हमारा तो समय बर्बाद हो रहा है, हम उसको बतलाते हैं, किंतु समझने वाले बहुत इने गिने हैं, इसलिए इस चीज को समझो। जिनको अस्वरूप वही जारम, जारम को ले लो, रमणम जारम मत कामा, रमणम जारो एक एक तरफ ले लो, और अस्वरूप विद अबला इधर में लो लेकर के, तब इसका अर्थ ये बनता है कि जो लोग हमारे स्वरूप को नहीं जानते हैं, कृष्ण परब्रह्म हैं, नारद ऋषि उद्धव इत्यादि बड़े बड़े लोग इस चीज को जानते हैं, किंतु ये जो अबला नारियां हैं, जो नीच जाति की हैं, और कैसी हैं, वनचरी हैं, रूप भी नहीं है, साधु संग का ज्ञान नहीं है, भक्ति का ज्ञान नहीं है, ज्ञान का भी ज्ञान नहीं है, सदाचार भी नहीं है, सदाचार से भी बहिर्गत, आचार विचार भ्रष्ट, टट्टी करके फिर स्नान करने की जरूरत है, या टट्टी पहने हुए कपड़े को फिर चेंज करना है, ये भी ज्ञान नहीं है, और ऐसी ये भिलनी या पुलिंदी कन्याएं, अथवा हमारे दर्शन से भी वंचित रहती हैं, कृष्ण को दर्शन करती हैं, बहुत दूर से यदि कभी हो गया तो हो गया, नहीं तो दर्शन भी संभव नहीं। मेरे सौंदर्य का ज्ञान भी जिनको नहीं है, ऐसी ये कदाचित लकड़ी और कंडे बीनने के लिए जंगलों में जाती है, टोकरी ले लेंगी, टोकरी लेकर के चली जाते हैं, लकड़ी कहां कहां पड़ी हुई है उसको ले आते हैं। ये इनका सौभाग्य तो देखो, वन में गई इस काम के लिए, और हुआ क्या, गोपियों के अंगों का कुमकुम जो तृण में लगा हुआ है, ओष बिंदु के ऊपर जो कृष्ण के चरणों से उसमें लग गया, केवल वैसा ही उन लोगों का संग उन्होंने देखा, और उसको काम में परवश होकर के ऐसे लेकर के अपने मुख में अपने अंगों में लपेट ली। ये गोपियों का संग, डायरेक्ट संग की बात छोड़ो, ऐसा संग बहुत अंग से उतरा हुआ कुमकुम और वो लग गया घास पर और कृष्ण के चरण कमलों में और फिर लग गया घास पर और घास से उन्होंने घास का संग किया। अब वो गोपियों से संग से वो हो गया कैसे कहां दूर और उनको मिला क्या, गोपियों जैसा प्रेम मिल गया। ऐसा देखो तो इनकी महिमा मत काम, मेरे प्रति कामना पैदा हुई मुझे प्राप्त करने के लिए कामयुक्त होकर के, कैसे कामात भयात द्वेषात, ये पांच बतलाए या छह। यदि कोई क्रोध से भी द्वेष से भी शत्रुता बसता, उनके शत्रुता भी कर करते, यहां तक कि जिसको काम कहते हैं, काम माने दुराचारिता, जो काम वो भी हमारे प्रति यदि हो जाए, किसी न किसी रूप से उनका चित्त उनमें कृष्ण में आविष्ट आविष्ट माने लग जाए, स्पर्श कर जाए, तो क्या होगा, वो कृष्ण को प्राप्त हो जाएगा। भय से और क्रोध से भी बतलाया और उसके लिए देख लाया भयात कंस और चैद्यादि आदव जो सब बतलाया। ये लोग क्या किया, क्रोध से चद्यादेव शिशुपाल और ये कंस भय से अस्थिर होकर के कृष्ण कहां जे इधर देखता इधर कृष्ण, उसको मारो इसको मारो उसको मारो, कृष्ण के लिए अपनी बहन को मारने की चेष्टा की, कितना उत्पात किया, यहाँ के समस्त जदवंशियों को मार पीट करके यहां से भगा दिया भय के कारण, किंतु कृष्ण में अविष्ट हो रहा, इस कारण से उसकी भी गति हुई। कौन सी गति हुई, एक गति सबकी नहीं हुई, क्रोध वाले को एक रूप में होगा, भय वालों को एक रूप में होगा, भक्ति से जो चित्त अविष्ट होगा जिनका उनका एक रूप में होगा, और काम वाले का कैसा होगा, काम वाले में जरा प्रीति है ना, यद्यपि प्रीति शुद्ध नहीं है तो भी प्रीति है उसमें, तो वैसे प्रीति को वो प्राप्त कर जाता है। कृष्ण के प्रति कामुकता बुद्धि भी हो तो कोई हर्ज नहीं, क्रोध से भी हो जाए कोई बात नहीं, जैसे तैसे जैन केन उपायेन कृष्णे मनोनिवेशाय, अथवा फिर कह रहे हैं अब दूसरा अर्थ बतला रहे हैं उसे भी सुंदर, गोपी गण के संग के गुण से अर्थात तो उनके अंग से उतरे हुए कुमकुम जो घास में लिप्त है, उस घास के संग से ये कैसी, ये भगवान के स्वरूप को नहीं जानने वाली हो करके भी ब्रज भूमि वास के अवान्तर फल से, ब्रज भूमि में रहती है कहाँ, गोवर्धन में रहती है, काम्य वन में रहती है और सब जगहों में रहती है जहां पर कि जंगल और पहाड़ है, ब्रज में ऐसे ही सब स्थान रह करके ब्रज भूमि के अवान्तर फल से स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो गई कितना बज गया, स्वरूप ज्ञान को प्राप्त हो गई, गोपियां स्कूल नहीं गई कॉलेज नहीं गई और कृष्ण को तर्क वितर्क में परास्त कर सकती हैं, ये कैसी हैं। हरिदास ठाकुर स्कूल कभी नहीं गए, हरि नाम कर रहे हैं, अब बड़े बड़े पंडित लोग उनकी चरुली की धूली के बराबर भी नहीं हो सकते, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज स्कूल कॉलेज नहीं गए, हरि नाम का आश्रय लिया, सत्संग में भक्ति विनोद ठाकुर के संग में रहे, प्रभुपाद जैसे उद्भुत पांडित्य वाले व्यक्ति उनको रिफ्यूज कर दिया, नहीं हम शिष्य नहीं करेंगे, बड़े बड़े विद्वान लोग जो भागवत का उस समय में पाठ करते थे, कौन से नाम याद है, प्राण गोपाल गोस्वामी, बहुत नाम याद, हजारों लोग उनका पाठ सुनने के लिए जाते, उन्हें गोसाई तुम्हारा अर्थ भालो होलो ना, तखन ते हाथ जोड़े उखने दाढ़ी अपने कि प्रभु हमारे कोथाय भूल है, भूल देखिए। तो ये मूर्ख होते हैं यदि गोपियों के चरण की रोज रज को भी पाने वाली व्यक्ति कोई हो, असभ्य भी हो, वो कैसी हो जाएगा? स्वरूप को जानने वाली, किसके? अपने स्वरूप को भी और कृष्ण स्वरूप को भी वो समझ सकती है। और गोपियों के संघ के प्रभाव से परम भक्ति का उदय भी हो गया उनके हृदय में। उदय नहीं होता तो ऐसे काम भाव को प्राप्त होती, जार भाव को, उत्पत्ति भाव को प्राप्त होती, ये संभव नहीं था। इसलिए प्रेम भक्ति हो गई उनको। आत्म तत्व के अनुसंधान से रहित होने पर भी प्रेम से भर गई, अर्थात ऐश्वर्य गान को भी लांग गई। ऐश्वर्य शिथिले नहीं मोर प्रीत, इसको भी लांग गई, इनको जरूरत ही नहीं पड़ी। माधुर्य मात्र अनुभव करे बोलिया। ऐश्वर्य लखन हमार स्वरूप विशेष के जानना, भगवान का स्वरूप जानना माने क्या? ऐश्वर्य जानना, कृष्ण पर तत्व है, क्या है वो बदंती तत्व। तो विदस तत्व ज्ञानम अद्वैम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान। फिर भगवान कहे हैं कौन है? एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु, ये सब वर्णन, ये सब तत्व ज्ञान है। यह रहने से प्रेमा भक्ति गोपियों जैसे ब्रज की भक्ति नहीं हो सकती, उसको भी पार करके कहां ब्रज भक्ति में पहुंच गई, कैसी गोपियों जैसी भाव वाली हो गई। ये सत्संग की महिमा है। अथवा फिर एक और अर्थ इसको करते हैं, किस लिए कर रहे हैं? जो जो जिस अधिकार में उसी अधिकार में रह करके इन चीजों को समझेगा और उसी अनुसार में अपना साधन भजन करेगा, अधिकार को छोड़ करके नहीं। अथवा नीच जाति होने के कारण कुरूप मैली भी, और अपने अपने रूप सौंदर्य के अनुसंधान करने, मैं कैसी कुरूप हूं, दांत निकले हुए हैं, काली हूं, कोई लावण्य नहीं है, ये सब अपने तरफ में दृष्टि नहीं गया है, बस कृष्ण के सौंदर्य पर आकृष्ट हो गई। ये कैसा है? जैसे एक कौड़ी का भी कोई व्यक्ति नहीं और उसको चिंतामणि देकर के उसके लिए लोभ उत्पन्न हो जाए, ऐसे ही उन्होंने ये विचार नहीं किया कि मैं कैसी हूं, कुरूप हूं, कैसी नीच हूं, कैसी काली हूं, हमको कृष्ण पसंद करेंगे कि नहीं, ये नहीं देखा, बस उनका रूप देख करके मुग्ध हो गई। रूप देखा भी नहीं, केवल कुमकुम के स्पर्श से, घास के स्पर्श से ही उनकी ये दशा हो गई। उन गोपियों की महिमा कैसी समझो। अथच हमार सौंदर्य आदि अनुभव करे बोलिया मत का, हमारे सौंदर्य का अनुभव करना, मधुर सौंदर्य का जो गोपियां अनुभव करती हैं। इसलिए मत काम, हमारी कामना करने लगी कैसे कृष्ण मिलेंगे, कैसे कृष्ण मिलेंगे। अतः सही अबलागन, वे अबलाएं परब्रह्म स्वरूप घन स्वरूप, परब्रह्म के घन स्वरूप, घन माने कृष्ण का जो रूप है, ये यह जो रूप है परब्रह्म का घन स्वरूप, जैसे गुरु है ना घना घनत्वम, कृष्ण करुणा के घन विग्रह हैं, ऐसे रस के ये घन विग्रह हैं, रस घन। यदि उसको जमा दिया जाए और उसकी मूर्ति ठोस हो जाए, ऐसे ये कृष्ण हैं, और हमारे प्रति ऐसा सुंदर भाव, ये हमारे बरहों, कानी कुब्जी लंगड़ी लूली और ऐसी, और कृष्ण को देख करके कह जाए यही हमारे पति हो। कुब्जा तो परम सुंदरी थे किंतु कुबड़ी थी, उसको कोई नहीं पूछता था, मुख बड़ा सुंदर था किंतु कृष्ण ने जब उसको सीधा कर दिया होगा अपने हाथ से स्पर्श, फिर कैसी हो गई? जगत के सभी लोग उसको चाहने वाले हो गए होंगे, किंतु उसने और किसी को नहीं चाहा, किसको चाहा? तो अभी उसका प्रेम अभी शुद्ध नहीं है, तो उसकी गति क्या होगी? गोपियों का संग हो होता तो हम कह सकते थे जैसा, किंतु उनका तो संग हुआ नहीं, किंतु गति अच्छी ही हुई होगी। अच्छा कि उन लोगों ने जो कृष्ण को पाया, कृष्ण की प्राप्ति हुई, तो किस रूप में पाया? उनको पति के रूप में पाया या किसी दूसरे रूप में पाया? कहते हैं जारम। जारम माने अपने पति को छोड़कर के दूसरे पति पर जो भाव होता है उसको कहते हैं जार भाव। इस रूप में उपपति के रूप में उन लोगों ने पाया। गोपियों के अतिरिक्त ऐसा किसी को भाव नहीं है, ऐस भाव को, सर्वोत्तम भाव को उन्होंने पाया, जिसके लिए ब्रह्मा शंकर इत्यादि कामना करते हैं, पाते हैं कि नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। अर्थात गोपियों के संग के प्रभाव से गोपी भाव को पाया। कहने गोपी संगात एव एष हेतु गोपी वत प्राप्त। गोपियों के भाव जैसे हैं वैसे प्राप्त कर गई। कब पाई? देहांतरे तस्मिन एव देहे पाई, उसी शरीर से अथवा देहांतर में उसको पा गई। जिन लोगों ने उसी देह से उसी समय में पा लिया, उत्कट अभिलाषा हुई होगी उनको, और उसी शरीर को छोड़ करके जैसे उनके पतियों ने, पति वाले लोगों ने उनको बंद कर दिया, बस विरह तीव्र ताप में धोता अशुभा और धान प्राप्त, बस छिड़ मंगला होकर के उसी जन्म में ही पा लिया। और जिन लोगों का इतना आसक्ति नहीं थी, जो उन्मादनी नहीं थी, उन्मादनी तो ऐसी गति हुई, और जो उन्मादनी नहीं थी, जो कि सहशक्ति थी, उनको जन्मांतरे दूसरे जन्म में साधन करके, कहां से साधन किया? साधारण रूप में साधन करके नीचे से ऊपर जाकर के गोपियों के उस भाव को ही पाया। उनका इस जन्म में संस्कार हो गया, उनको गुरु भी मिलेगा कैसे? उसी भाव वाले गोपियों की के जैसे भाव को पाने के लिए जो साधन कर रहे होंगे, ऐसे लोगों उनको गुरु के रूप में मिले होंगे, और धीरे 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 बस आज यही तक रहे। बंजा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पावनेभ्यो वैश रामचंद्र प्रभु यू शुड एक्सप्लेन टू ऑल।